بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پویتر قرآن کے سورہ انفال کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری حشنگ محمد یون۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیں، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں क्षमा और सम्मानित आजीविका है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, मुहर्रम की पहली, जुलाई की 30 और मुर्दाद माह की 8 तारीख। एक घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आरंभ हम विगत की ही भांति विश्व समाचारों से करेंगे। विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के उपरांत हम आपको मुहर्रम के संबंध में विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे और हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा उज्जवल भविष्य। तो ये थी कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है partstoday.com/hi। इन कार्यक्रमों पर आप अपनी प्रतिक्रियाओं को हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। भारत ने ईरान के शंघाई सहयोग संगठन के स्थायी सदस्य होने की मांग की है। सदर के समर्थक फिर इराक की संसद में घुस गए। हसन नसरुल्ला ने बताया कि हमारी सारी उपलब्धियां आशूरा के कारण हैं। मध्य पूर्व में इस बार अभूतपूर्व वर्षा के बाद बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
भारत ने ईरान के शंघाई सहयोग संगठन के स्थायी सदस्य होने का समर्थन किया है। स्पुतनिक समाचार एजेंसी के अनुसार भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। शुक्रवार को होने वाली इस बैठक में उन्होंने कहा कि इस संगठन में ईरान की उपस्थिति वैश्विक बाजार में इसके प्रभाव में वृद्धि का कारण बनेगी। भारतीय विदेश मंत्री ने आगे कहा कि शंघाई सहयोग संगठन को इससे एक अन्य लाभ ये भी होगा कि वो ईरान के चाबहार बंदरगाह का भी प्रयोग कर सकेगा। भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास में भाग लिया है। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 28 तथा 29 जुलाई को आयोजित हुई थी। याद रहे कि 15 जून 2001 को चीन के शंघाई में कुछ देशों की उपस्थिति से शंघाई सहयोग संगठन की नींव डाली गई थी। जिन देशों की मौजूदगी में संगठन की आधारशिला रखी गई थी वे हैं कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस। सन 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके स्थायी सदस्यों में शामिल किया गया था।
सदर धड़े के प्रमुख मुक्तदा सदर के समर्थक आज दूसरी बार इराक की संसद में फिर दाखिल हो गए। सदर के समर्थक शनिवार को इराक की राजधानी बगदाद के अति सुरक्षित क्षेत्र ग्रीन जोन में प्रविष्ट होने के बाद वहां की संसद में घुस गए। कुछ इराकी सूत्रों ने बताया है कि मुक्तदा सदर के समर्थकों के इराकी संसद में प्रवेश के समय सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में कई प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल घायल हो गए। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सदर के समर्थक शनिवार की सुबह पहले बगदाद के अथहरीर स्क्वायर पर एकत्रित हुए, बाद में वे सारी बाधाओं को तोड़ते हुए संसद में घुस गए। इससे पहले बुधवार को भी सदर के समर्थक इसे देश के आगामी प्रधानमंत्री पद के लिए मोहम्मद अस्सुदानी की नामांकन का विरोध करते हुए संसद में घुस गए थे, जहां पर काफी समय तक विराजमान रहे। इससे पहले इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा काजिमी ने एक बयान जारी करके प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण रहते हुए सुरक्षा बलों के आदेशों का पालन करने का आह्वान किया था। उन्होंने लिखा कि राजनीतिक तनाव समाज में गंभीर तनाव का कारण बनता है, जो लोगों के हित में नहीं होता। मुक्तदा सदर के समर्थकों ने बुधवार से इराक के आगामी प्रधानमंत्री पद के लिए मोहम्मद अस्सुदानी की नामांकन का विरोध आरंभ किया है। अपने समर्थकों के संसद में घुसने के बाद मुक्तदा सदर ने कहा था कि ये आमजन का संदेश है। उन्होंने अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया। इसी बीच इराकी राजनीतिक दलों ने इराकी राष्ट्र से मांग की है कि वो हर प्रकार के मतभेदों से दूर रहे।
सीरिया के पेट्रोलियम मंत्री ने बताया है कि लेबनान की वित्तीय सहायता रोकने के लिए अमरीका विश्व बैंक पर दबाव बना रहा है। बस्साम तामे ने ये बात स्पष्ट शब्दों में कही है कि सीरिया के माध्यम से लेबनान के लिए मिस्र की गैस पाइपलाइन के बारे में हम सहयोग करने को पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस गैस पाइपलाइन को रोकने के लिए अमेरिका पूरी कोशिशें कर रहा है। सीरिया के पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि मैंने लेबनान के ऊर्जा मंत्री वलीद फैयाज से इस बारे में कई बार वार्ता की और ये भी बताया कि राष्ट्रपति बशार असद के अनुसार वे इसका समर्थन करते हैं। उनका कहना था कि सीरिया की ओर से इस बारे में कोई बाधा नहीं डाली गई। बस्साम तामे ने कहा कि अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि सीरिया के माध्यम से लेबनान के लिए मिस्र की गैस पाइपलाइन को अमेरिका दबाव के एक हथकंडे के रूप में प्रयोग कर रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस परियोजना को लागू करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग की जरूरत होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले साल सितंबर में जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र के पेट्रोलियम मंत्रियों की एक बैठक में सीरिया के माध्यम से लेबनान के लिए मिस्र की गैस पाइपलाइन के क्रियान्वयन के बारे में विचार विमर्श किया गया था। इस बारे में सर्वसम्मति बनने के बाद ये बताया गया था कि इसका मुख्य लक्ष्य लेबनान के बिजली संकट का समाधान करना है।
लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह के महासचिव ने कहा है कि हमारी सारी उपलब्धियां आशुर का परिणाम हैं। सैयद हसन नसरुल्लाह ने गत रात्रि बैरूत के दक्षिण में भाषण देते हुए बल देकर कहा कि इस्लामी प्रतिरोध करबला, आशुरा, इमाम हुसैन, हजरत जैनब और उन लोगों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता जो करबला में उनके साथ थे, और त्याग, बलिदान, सफलता और जो भी उपलब्धियां हमारे पास हैं सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कृपा दृष्टि का परिणाम है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि लेबनान में 40 वर्ष का लंबा प्रतिरोध, जिहाद, धैर्य, परित्याग, सफलता और उपलब्धियां सब की सब आशुरा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आशुरा को जिंदा करके प्रतिरोध, भरोसा, धैर्य और ईश्वर पर उम्मीद का हमारा रास्ता जारी रहेगा। उन्होंने बल देकर कहा कि आशुरा के दिन हम अपना ध्यान धार्मिक व सांस्कृतिक मामलों पर केंद्रित करेंगे और राजनीतिक मामलों की बात नहीं करेंगे। अगर मुहर्रम की रातों को कोई नई घटना घट गई और उसके बारे में बात करना ज़रूरी हुआ तो बात करेंगे, परंतु असली चीज़ धार्मिक और सांस्कृतिक मामले हैं। याद रहे कि ईरान, इराक और लेबनान सहित विश्व के बहुत से देशों में आज पहली मुहर्रम है।
पश्चिम एशिया के कुछ देशों में इस बार अभूतपूर्व ढंग से बारिश हो रही है। इस वर्षा को अभूतपूर्व इसलिए कहा जा रहा है कि सामान्यतः इस जमाने में यहाँ पर बारिश नहीं होती बल्कि भयंकर गर्मी पड़ती है। मध्य पूर्व में ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन और यमन में हालिया दिनों के दौरान भारी बारिशें हुई हैं। इस भारी बारिश के कारण कई देशों में बाढ़ आ गई है। यूएई के फुजैरा, शारजा और रासुल खैमा में पिछले दिनों बहुत तेज बारिश हुई जिसके कारण वहां पर बाढ़ आ गई। इस बाढ़ से जानी और माली दोनों प्रकार का नुकसान हुआ। वहां से 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। सऊदी अरब के कई नगरों में बारिश की सूचना है जिनमें सबसे अधिक वर्षा असीर नगर में हुई। कुवैत में भी भारी बारिश के कारण वहां की सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया। यमन में भारी वर्षा और उसके परिणाम स्वरूप आने वाली बाढ़ में कम से कम 16 लोग मारे गए जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। ओमान के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई और वहां के मौसम विभाग ने आगे भी बारिश के प्रति सचेत किया है। बहरीन के मौसम विभाग ने शनिवार को वहां पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है। ईरान में पिछले कई दिनों से होने वाली वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। ईरान में अब तक बाढ़ से मरने वालों की संख्या 55 से अधिक हो चुकी है। इसी बीच भारत में मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर भारत में भीषण वर्षा की भविष्यवाणी की है। उसके अनुसार 2 जुलाई तक भारत के कई राज्यों में भारी वर्षा की संभावना पाई जाती है।
अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन अभी से 2024 के चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। अमरीकी वर्तमान राष्ट्रपति बाइडन का कहना है कि 2024 में होने वाले आगामी राष्ट्रपति चुनाव में मेरा हिस्सा लेने का इरादा है। 2024 में अमरीका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के समय जो बाइडन की आयु 81 वर्ष की होगी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता की ओर से बाइडन द्वारा आगामी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की बात ऐसी स्थिति में कही गई है जब ताज़ा सर्वेक्षणों से पता चला है कि बाइडन की लोकप्रियता लगातार घट रही है। जब से बाइडन ने अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला है उसके बाद से उनकी लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। उनके शासनकाल में अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ी। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ रही है।
चेचनिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का स्रोत है। उन्होंने अमेरिका की ओर से रूस को आतंकवाद का समर्थक बताते हुए कहा कि क्षमा कीजिएगा, उन्होंने इसी के साथ रूस को आतंकवाद का समर्थक बताते हुए किए जाने वाले प्रयासों के प्रति वाशिंगटन को चेतावनी भी दी है। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा है कि अमेरिका न केवल आतंकवादी और दूसरे देशों पर हमला करने वाला देश है बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का स्रोत भी है। इसी प्रकार उन्होंने लिखा है कि अमेरिका विवादों में परमाणु हथियारों का प्रयोग करता है, वो भी न केवल यमनी सेना के खिलाफ बल्कि दूसरे देशों के आम नागरिकों के खिलाफ भी।
अमेरिका ने दावा किया है कि रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध जारी है उसमें दोनों पक्षों की ओर से हताहतों की संख्या का केवल अनुमान लगाया गया है। अमेरिका ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अब तक इस जंग में करीब 75,000 रूसी सैनिक मारे गए या घायल हो चुके हैं और रूस के हथियारों का स्टॉक आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी अधिकारियों का अनुमान था कि रूस ने करीब 150,000 सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया था। अब अमेरिका ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से हताहतों की सटीक संख्या का केवल अनुमान लगाया गया है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे आतंकवाद के मुद्दे पर। अमेरिका को दिए जाने वाले जवाबों की। हालिया समय में अमेरिका और चीन की नोकझोंक और चेतावनियां भी देखने में आ रही हैं। ये विषय भी कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। वहीं भारत नियंत्रित कश्मीर में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जबकि मुहर्रम से पहले जरूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये विषय भी राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। तो शुरू करते हैं आतंकवाद के मुद्दे से। चेचनिया के राष्ट्रपति ने अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया है और उसे आतंकवाद का जनक करार दिया है। जायजा ले रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
चेचनिया के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव ने कहा है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का स्रोत है। उन्होंने अमेरिका की ओर से रूस को आतंकवाद का समर्थक बताने हेतु किए जाने वाले प्रयास के प्रति वाशिंगटन को चेतावनी दी है। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा है कि अमेरिका न केवल आतंकवादी और दूसरे देशों पर हमला करने वाला देश है, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का स्रोत व जनक भी है। इसी प्रकार उन्होंने लिखा है कि अमेरिका विवादों में परमाणु हथियारों का प्रयोग करता है, वो भी न केवल यमनी सेना के खिलाफ बल्कि दूसरे देशों के आम नागरिकों के खिलाफ भी। इसी प्रकार चेचनिया के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव ने कहा कि विश्व के 80 देशों में अमेरिका की 750 छावनियां हैं और इस समय विश्व के 159 देशों में उसके 1,73,000 सैनिक तैनात हैं, जो मुख्य रूप से गैर कानूनी कार्रवाइयां करते रहते हैं और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको ने यूक्रेन में होने वाले युद्ध की अभी तक भर्त्सना नहीं की है, जबकि इसके विपरीत हाइटी, ग्वाटेमाला, डोमिनिकन गणराज्य, कनाडा, कोलंबिया, पराग्वे, इक्वाडोर और अमेरिका ने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई की कड़ी भर्त्सना की है। जानकार हलकों का मानना है कि जो भी देश अमेरिका की वर्चस्ववादी नीतियों के खिलाफ हो जाता है, वाशिंगटन किसी न किसी बहाने उस पर मानवाधिकार के हनन और आतंकवाद के समर्थन का आरोप मढ़ देता है। अभी कुछ समय पहले तक रूस आतंकवाद का समर्थक नहीं था, पर जब से उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, तब से मॉस्को के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों में वृद्धि हो गई है और वाशिंगटन उस पर दबाव डालने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र रचता रहता है। रोचक बात यह है कि ये कार्य वो देश कर रहा है जिसका मानवाधिकारों के हनन और आतंकवादियों को बनाने और उनके समर्थन में उसका लंबा इतिहास रहा है। खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस देश के पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन कह चुकी हैं कि अलकायदा को उन्होंने बनाया है। कितनी विचित्र बात है कि जिस देश का पूर्व राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ये स्वीकार करे कि उसने अलकायदा को बनाया है, उसके बावजूद वही देश दूसरे देशों पर आतंकवाद के समर्थन का आरोप लगाए तो कितना हास्यास्पद है। आज वो अमेरिका आतंकवादी गुटों और दाइश से मुकाबले की बात कर रहा है जिसने अलकायदा को बनाया है और उसने आतंकवादी गुटों का व्यापक समर्थन किया है और कर रहा है। अगर आतंकवादी गुटों के प्रति अमेरिका का व्यापक समर्थन न होता तो सीरिया और इराक जैसे देशों से आतंकवादी गुटों का अंत कब का हो चुका होता। इस संबंध में बहुत से जानकार हलकों का मानना है कि अगर आतंकवादी गुटों को अमेरिकी समर्थन और उसका आशीर्वाद प्राप्त न होता तो सीरिया और इराक जैसे देशों का संकट ही अस्तित्व में न आता। इसी प्रकार इन हलकों का मानना है कि ये अमेरिकी समर्थन का परिणाम है जो इसराइल 73 से अधिक वर्षों से फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के खिलाफ सरकारी आतंकवाद जारी रखे हुए है और कभी भी अमेरिका जानवी शासन की आतंकवादी कार्रवाइयों की भर्त्सना तक नहीं करता और पूरी दुनिया में स्वयं को मानवाधिकार का सबसे बड़ा रक्षक भी कहता फिरता है। बहरहाल अमेरिका की इस प्रकार की कार्रवाइयों का लक्ष्य वास्तविकताओं से आम जनमत के ध्यान को भटकाना है, परंतु अमेरिकी नेताओं को शायद ये बात ज्ञात नहीं है कि अब विश्व जनमत पहले जैसा नहीं है और जो विश्व जनमत को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है वास्तव में वो केवल खुद को मूर्ख बनाता है।
حالیہ سمے میں چین اور امریکہ کے بیچ تناؤ، نوک جھونک اور چیتاونیوں کا درشیہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جائزہ پیش کر رہے ہیں سید میسم۔
کریملین کے پروکتا دیمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ ماسکو چین کی اکھنڈتا اور سمپربھوتا کا بھرپور سمرتھن کرتا ہے۔ غور طلب ہے کہ چین نے حال ہی میں سیدھے طور پر امریکہ کو چیتاونی دی تھی کہ اگر امریکی کانگریس کی اسپیکر نینسی پیلوسی تائیوان کی یاترا کرتی ہیں تو واشنگٹن کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد گروار کو چین کے راشٹرپتی شی جن پنگ نے اپنے امریکی سمکش جو بائیڈن کے ساتھ ٹیلی فون پر ہوئی بات چیت میں انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ واشنگٹن آگ سے کھیلنا بند کرے اور تائیوان کو لے کر چین کے بٹوارے کی سازش نہ رچے۔ اسی سندربھ میں اب کریملین کے پروکتا نے کہا ہے کہ کسی بھی دیش کو چین کی اکھنڈتا پر پرشن چنہ لگانے یا اکسانے والا قدم اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ تائیوان کو لے کر امریکی ادھیکاریوں کی اکساوے والی کارروائیوں کا الیکھ کرتے ہوئے پیسکوف نے کہا کہ اس طرح کے بھڑکاؤ قدموں سے انتراشٹریہ استر پر تناؤ بڑھے گا، کیونکہ دنیا پہلے سے ہی کئی طرح کی کھیتریے اور انتراشٹریہ سمسیاؤں سے جھوجھ رہی ہے۔ چین سواشاست تائیوان کو اپنے ایک پرانت کے روپ میں دیکھتا ہے۔ چین کا ماننا ہے کہ اگر کوئی تائیوان کو اس سے الگ کر کے دیکھتا ہے تو یہ اس کی سمپربھوتا اور اکھنڈتا کا الگھن ہے، جس کے لیے وہ سینیہ ہستکشیپ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ شکروار کو اس سے پہلے روس کے ودیش منتری سرگئی لاروف نے کہا تھا کہ تائیوان کو لے کر ان کا دیش اکھنڈ چین کا سمرتھن کرتا ہے اور اس سمبندھ میں کسی بھی اکسانے والے قدم کی نندا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، اکھنڈ چین کو لے کر ہمارے دیش کی نیتی میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے، وہی رخ جس کا امریکی شبدوں میں سمرتھن کرتے ہیں، لیکن ویوہارک روپ سے وہ وپریت دشا میں چل رہے ہیں۔ غور طلب ہے کہ اوپچارک روپ سے واشنگٹن نے ایک سوادھین دیش کے روپ میں تائیوان کو مانیتا نہیں دی ہے، اور امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن کا بھی کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس ون چائنا پالیسی کا سمرتھن کرتا ہے، لیکن امریکہ کے تائیوان کے ساتھ مضبوط انوپچارک رشتے ہیں اور وہ اسے ہتھیاروں کی آپورتی بھی کر رہا ہے۔ آج کے ویشوک پریویش میں یہ صاف دکھ رہا ہے کہ امریکہ کی شکتی کم ہو رہی ہے اور چین ایک ابھرتی ہوئی شکتی ہے۔ چین ایک ابھرتی ہوئی مہا شکتی ہے۔ وشلیشک مانتے ہیں کہ ویشوک سینیہ شکتی کے معاملے میں چین اگلے کچھ دشکوں میں دنیا کی سب سے بڑی مہا شکتی بن سکتا ہے۔ حالیہ ورشوں میں یہ بھی نظر آیا ہے کہ چین نے اپنے مدوں پر ٹھوس قدم اٹھائے ہیں اور دنیا اس کی بات سن رہی ہے، خاص طور پر جب اسے کسی مدے پر روس کا اسپشٹ سمرتھن مل رہا ہو۔
بھارت نیندرت کشمیر میں ہنسا کی گھٹناؤں کے سماچار ہیں، وہیں محرم سے پہلے کئی جگہوں پر تیاریاں بھی اپنے چرم پر پہنچ گئی ہیں۔ ادھیکاریوں نے تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔ بیورے کے ساتھ ہمارے سنواددتا سپت محمد حسن۔
اتری کشمیر کے بارہمولہ کے ایک نکٹوردی چھیتر میں بھارتی سرکشا بلوں اور الگاوادیوں کے بیچ ایک مڑبیڑ میں ایک الگاوادی چھاپہ مار ہتاحت اور 3 سرکشا کرمی بری طرح گائل ہوئے ہیں۔ سرکشا بلوں کے پروکتا نے اس گھٹنا کے حوالے سے جو جانکاری دی اس کے انوسار بھارتی سرکشا بلوں نے ایک وشیش سوچنا ملنے کے ترنت بعد اس چھیتر کا گھیراؤ کیا اور تلاشی ابھیان آرمبھ کیا، جس کے بیچ گھیرے میں آئے الگاوادی چھاپا ماروں سے کہا گیا کہ وہ آتم سمرپن کرے، پرنتو انہوں نے اندھا دھند گولیاں چلائی جس کا جواب سرکشا بلوں نے بھی دیا۔ اس طرح ایک مڑبیڑ آرمبھ ہوئی جو کافی سمے تک جاری رہی۔ اس مڑبیڑ میں ایک الگاوادی چھاپا مارا تات ہوا جس کی ترنت پہچان نہیں ہوئی۔ مڑبیڑ میں 3 سرکشا کرمیوں کے گائل ہونے کے بھی سماچار ہے، پرنتو پولیس اور سرکشا بلوں کے پروکتا کا کہنا ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ابھی اس چھیتر میں تلاشی ابھیان جاری ہے اور بیورے کی پرتیکشا ہے۔ اس بیچ محرم الحرام کے حوالے سے پرشاسن نے بھی اپنی طرف سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اس حوالے سے ڈویژنل کمشنر کشمیر شری پولو نے سینٹرل ڈسٹرکٹ بڈگام کا دورہ کیا۔ اس اوسر پر انہوں نے اتہاسک امام باڑا کا بھی دورہ کیا اور اس اوسر پر انہوں نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا کہ پرشاسن یہ چاہتی ہے کہ جو بھی سماروگ ہو وہ شانتی پورک ڈھنگ سے ہو۔ انہوں نے اس اوسر پر پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا،
اس کی میموری میں منایا جاتا ہے، اس کا کوئی سیلیبریشن نہیں ہوتا ہے، جو سیکریفیسز ہے اس کو ریممبرنس کے طور پر یہ مناتے ہیں کمیونٹی، تو جو ایوننگ کی گیدرنگس ہوتی ہے یا جو پرمیٹیڈ روٹس ہے اس پر پروسیشن نکلتے ہیں اس میں کوئی ڈیفیکلٹیز نہ ہوں، وہ دیکھنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ بڑگام میں بڑے پیمانے پر آبادی رہتی ہے کمیونٹی کی، ماگام میں بھی رہتی ہے، زیڈیبل سائڈ میں بھی رہتی ہے، تو یہ دو تین ایریاز کو میں جاؤں گا، جو مین صفائی کا انتظام ہے، باقی ڈاکٹر ہاسپٹلس کا انتظام ہے وہ دیکھوں گا۔ ڈیفینیٹلی جو ہے یہاں جو مین امام باڑہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں، انتظامات اچھے ہیں، جو پرانا ایک ٹوائلٹ کمپلیکس ہے اور یہاں ایک سولر کا پلانٹ دکھایا، پارک بھی دکھائی جس میں تھوڑا سا کرنے کی ضرورت ہے، ڈیفینیٹلی دھیان دیں۔
یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ 8 محرم اور 10 محرم کے کیندری جلوسوں پر پرتبندھ جاری ہے، اور پرشاسن نے کہا ہے کہ جہاں جہاں وہ اس کی اجازت دیں گے وہیں پر جلوس نکالے جائیں گے، اور جہاں وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے وہاں جلوس نہیں نکالے جائیں گے۔ وبھن دھارمک دلوں نے کہا ہے کہ وہ یہ آدیش برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ 8 اور 10 محرم کے جو جلوس ہیں وہ ہمارے اتہاسک جلوس ہیں، اور پچھلے 33 ورشوں سے ان پر جو پرتبندھ گھوشت کیا گیا ہے وہ ہمارے مذہبی معاملات میں کھلی طور پر مداخلت ہے۔ سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا کاریکرم سماپت ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ اس سمبندھ میں پرستت ہے ایک وشیش کاریکرم۔
دوستوں، محرم کے موقع پر ایک وشیش کاریکرم کے ساتھ آپ کی سیوا میں حاضر ہیں سواتی اور رویش زیدی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستوں، محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، لیکن یہ مہینہ اسلامک اتہاس کا سب سے مہتوپورن مہینہ بھی ہے۔ ہر سال محرم آتے ہی عاشورہ دیوس کی دکھد گھٹناؤں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کربلا کے میدان میں شہید ہونے والوں کو یاد کر کے لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کے آرمبھ ہوتے ہی مانوتا اور سوتنترتا کی بھاونا پنرجیوت ہونے لگتی ہے۔ اتیاچار کے خلاف اٹھنے والی آوازوں میں ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی محرم کے مہینے کا چاند دکھائی دیتا ہے، ویسے ہی دنیا کے زیادہ تر حصوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پران پریے نواسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کی یاد میں عزاداری شروع ہو جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے غم میں ڈوب جاتے ہیں، اپنے گھروں، محلوں، گلیوں اور امام باڑوں کو کالے رنگ کے کپڑوں سے سجا دیتے ہیں۔ انجمنیں اپنے اپنے علموں کو سجا کر امام حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں کا غم منانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو کالے کپڑے پہنا کر کربلا کے معصوم بچوں کا غم منانے کے لیے تیار کر دیتی ہیں۔ جدھر دیکھو ایک شوق میں ڈوبا ہوا واتاورن دکھائی دیتا ہے جس کو شبدوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ محرم آتے ہی ہر کوئی اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا غم منانے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین کی شہادت کا غم منانے والے ایمان والوں کے دلوں میں ایسی گرمی پیدا ہوتی ہے کہ جسے کبھی ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا ہے۔
محرم کے موقع پر کربلا کے پیاسوں کے نام پر جگہ جگہ لگنے والی سبیلیں لگنی شروع ہو گئی ہیں۔ इन सबीलों पर जहां कर्बला के प्यासों के नाम पर ठंडे पानी का इंतजाम किया जाता है, वहीं चाय, शरबत और अन्य खाने पीने की चीजों की भी व्यवस्था होती है। यह सब केवल और केवल उन शहीदों की याद में किया जाता है जिनको कर्बला के मैदान में 1400 वर्ष पूर्व 3 दिन का भूखा और प्यासा भीषण गर्मी में शहीद कर दिया गया था। इन सबीलों पर पानी पीने वाले जब जब पानी पीते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास को जरूर याद करते हैं। जब मुहर्रम का महीना आरंभ होता था तब इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की क्या स्थिति होती थी, इसके बारे में इमाम रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसे ही मुहर्रम शुरू होता था उसके बाद से मेरे पिता को कोई हंसते हुए नहीं देखता था। जैसे जैसे आशुरा का दिन नजदीक आता जाता था मेरे पिता का दुख बढ़ता जाता था, और जब 10 मुहर्रम का दिन होता था उस दिन वह सबसे ज्यादा गमगीन होते थे। सुबह से रात तक रोते रहते थे, परेशान रहते थे। उनके चेहरे से साफ झलकता था कि जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है।
दोस्तों, इसी तरह एक अन्य रिवायत में रैयान बिन शबीब नामक रावी द्वारा किताबों में आया है कि मुहर्रम के दिन पहले वो इमाम रजा अलैहिस्सलाम की सेवा में हाजिर हुआ तो इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हे शबीब के बेटे, जानते हो कि मुहर्रम का महीना एक ऐसा महीना है कि जब पहले अज्ञान काल के लोग इस महीने की पवित्रता की खातिर युद्ध और अत्याचार को इसमें वर्जित मानते थे, लेकिन इस जमाने के लोगों ने न ही इस महीने की पवित्रता का ख्याल किया और न ही पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महानता का। लोगों ने पैगंबर इस्लाम के प्राणप्रिय नवासे का कत्ल कर दिया, उनकी महिलाओं को बंदी बना लिया और उनकी संपत्तियों को लूट लिया। हे शबीब के बेटे, अगर तुम्हारा दिल किसी चीज़ के लिए रोने का करे तो तुम इमाम हुसैन इब्ने अली के लिए रोना। इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया कि हे शबीब के बेटे, अगर तुम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रोते हो तो तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों तक पहुंचने से पहले ही अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, चाहे वो गुनाह छोटे हों या फिर बड़े। हे शबीब के बेटे, अगर तुम जन्नत में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के साथ रहना चाहते हो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हथियारों पर लानत भेजो, और जब कभी भी हुसैन अलैहिस्सलाम की याद आए तो या लैतनी कुन्तो माहुम फाफूजा फौजन अजीमा को ज़रूर पढ़ो। इसका अर्थ है कि काश हम भी उनके साथ होते, मोक्ष और एक महान विजय प्राप्त करते।
यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर 1400 वर्षों से इमाम हुसैन का गम क्यों मनाया जा रहा है? आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आंदोलन और बलिदान का उद्देश्य और लक्ष्य क्या था? क्या इमाम हुसैन का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना था, या वह इस्लामी समाज में बदलाव लाना चाहते थे? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी हद तक शांति प्रेमी रास्ते से अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते थे? इस तरह लोगों की जाने न जाती और पैगंबर इस्लाम के खानदान की महिलाओं को बंदी न बनाया जाता। आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से इन्हीं को सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हुसैन हिदायत अर्थात मार्गदर्शन का चिराग और निजात अर्थात बचाव की नौका है। उनके जीवन शैली और उनके शिष्टाचार का व्यवहारिक अनुसरण करके इंसान और समाज खुशकिस्मत बन सकता है। एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बचपन में अपने नाना पैगंबर इस्लाम की सेवा में पहुंचे। पैगंबर इस्लाम ने उन्हें देखा तो उनका स्वागत किया और कहा कि हे धरती व आसमानों की शोभा, पैगंबर इस्लाम की पवित्र और मुबारक जबान से इमाम हुसैन के लिए जैसे ही यह शब्द निकले तो वहां बैठे पैगंबर इस्लाम के साथियों में से एक जो वही के रूप में आने वाले ईश्वरीय संदेश को लिखने का काम करते थे, उन्होंने पैगंबर इस्लाम से पूछा कि हे पैगंबर, क्या आपके अलावा भी कोई धरती और आकाश की शोभा है? पैगंबर इस्लाम ने कहा कि ईश्वर की सौगंध जिसने मुझे अपना दूत बनाकर भेजा, आसमानों की शोभा बनाया है, उसी ने मेरे हुसैन को भी धरती और आसमान की शोभा बनाया है। उसी ने कहा है कि हुसैन मार्गदर्शन का दीपक, निजात की नौका और ऐसा मार्गदर्शक है जो भी उसके रास्ते पर चलेगा वह कभी भटक नहीं सकता।
दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक प्रमुख विशेषता ये थी कि वो सही अर्थों में ईश्वर के बंदे थे। वो किसी भी अन्य पदवी से पहले ईश्वर के बंदे थे तथा बंदगी उनके पूरे अस्तित्व, उनकी बातों और कर्मों में सर्वोच्च स्थान रखती थी। वो ईश्वर की प्रसन्नता के अलावा किसी चीज़ के बारे में सोचते नहीं थे। उनका उत्साह और संतोष सब कुछ ईश्वर के लिए था। उन्होंने मुआविया के काल में वर्षों बड़े संयम के साथ धर्म की रक्षा की और जब देखा कि ईश्वर की इच्छा ये है कि यजीद के विरुद्ध आंदोलन शुरू करें तो वह अपनी जान और अपने प्रिय लोगों को कुर्बान करने में भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने कहा है कि हे पालनहार, उसे क्या मिला जिसने तुझे खो दिया और उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। उपासना से हार्दिक लगाव के कारण उन्हें अबू अब्दुल्लाह कहा जाता था। बंदगी के इस प्रेम को उन्होंने अपनी जान देकर चरम सीमा पर पहुंचाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विशेषताएं नामक पुस्तक में है कि हुसैन इबादत के प्रतीक हैं। ईश्वर के सभी दूतों ने ईश्वर की निष्ठापूर्ण उपासना की है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बंदगी बड़े विचित्र अंदाज की थी। वो अपना सिर कट जाने के बाद तक ईश्वर की उपासना में लीन रहे और कुरान की तिलावत करते रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 25 बार पैदल हज किया। हर रोज 1000 रकअत नमाज पढ़ते थे। बंदगी और नमाज से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इतना लगाव था कि आशूर से पहले वाली रात में जब शत्रु की सेना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों पर हमला कर देना चाहती थी, इमाम हुसैन ने कहा कि इस रात लड़ाई न की जाए बल्कि इसे उपासना में बिताया जाए और 10 मुहर्रम के दिन युद्ध हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने वो पूरी रात उपासना में बिताई। करबला की घटना में जैसे जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गम का पहाड़ टूट रहा था, उनका धैर्य और भी बढ़ता जा रहा था और वो हर साथी की शहादत पर यही कहते थे, हे पालनहार, तेरी इच्छा पर मैं भी राजी हूं।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आंदोलन ऐसे महान इंसानों की याद ताज़ा करता है कि ईश्वर के मार्ग में जिनका बलिदान दूसरों के लिए आदर्श और प्रेरणा है, वह इंसान जिनके लक्ष्य इस दुनिया से बड़े थे और जो महान शिक्षाओं व मूल्यों के लिए संघर्षरत थे। ईमान, वीरता, दृढ़ता और उदारता की दृष्टि से इतिहास के पन्नों की शोभा बढ़ाते हैं। इन इंसानों में से एक हजरत मुस्लिम इब्ने अकील हैं। इस महान सिपाही के रूप में वीरता और बलिदान का साक्षात उदाहरण हमारे सामने आ जाता है। कूफा में हजरत मुस्लिम इब्ने अकील का युद्ध इमाम हुसैन के महान आंदोलन की भूमिका थी। इमाम हुसैन का संबंध पैगंबर इस्लाम के परिवार से था। वे पैगंबर इस्लाम के नवासे थे। उन्होंने अरब जगत के महान कवि फरजदक से कहा था कि इन यजीदियों ने ईश्वर के अनुसरण को छोड़ दिया है, खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, शराब पीते हैं और गरीबों का माल लूटते हैं। मैं धर्म की रक्षा के लिए उठ खड़े होने और ईश्वर के मार्ग में जिहाद के लिए सबसे उचित इंसान हूँ। यही वजह थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और साथ ही इतनी सूझबूझ और बुद्धिमता के साथ अपना आंदोलन आगे बढ़ाया कि सच्चाई सबके सामने आ जाए और किसी के पास कोई बहाना न रहे।
दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आंदोलन ने अत्याचारियों का वास्तविक चेहरा बेनकाब कर दिया और उन्हें रहती दुनिया तक घृणा का पात्र बना दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आंदोलन ان کی شہادت تھا گھر کے لوگوں کے قیدی بنائے جانے کے ساتھ ہی امر ہو گیا۔ تو دوستوں کاریکرم کا سمے یہیں سماپت ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم محرم مہینے کے آرمبھ ہونے پر آپ سب کی سیوا میں ہاردک سمویدنا پیش کرتے ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو اب پیش ہے سبھا کا انتیم کاریکرم اجول بھوش۔
دوستو کاریکرم اجول بھوش کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور سید مسم کا سلام سویکار کیجیے۔ اس کاریکرم میں ہم اسلامی کرانتی کی سفلتا میں ایرانی مہیلاؤں کی بھومیکا کی چرچا کریں گے۔
پچھلے کاریکرم میں ہم نے بتایا تھا کہ کرانتی کی سفلتا کے بعد شاہی ویوستھا اور ودیشی شکتیوں کے ورچسو سے ایرانی سشستر بلوں کی مکتی اور ایرانی راشٹر کے ساتھ ان کے سمبندھ نے ایرانی سشستر بلوں کو اتنی گریما اور ادھیکار پردان کر دیا اور وہ ایک اجے سینا بن گئی ہے۔ ایرانی سشستر بلوں نے جنتا کی سہایتا سے 8 ورش تک اپنے راشٹر کی رکشا کی اور دشمن کو اپمان جنک ہار سویکار کرنے پر مجبور کر دیا۔
اسلامی کرانتی کے بعد لوگوں نے سوچھا سے اپنے راشٹر کی رکشا میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا۔ اسی پریم اور اچھا کے آدھار پر آج ایرانی بل اگریم مورچے سے لے کر دیش کے کونے کونے تک سرکشا اور شانتی ویوستھا کو سنشچت بنا رہے ہیں۔ ایران کے سشستر بلوں کے آتم نربھر ہونے کا وچار کرانتی کی سفلتا کی شروعات میں ہی اس کرانتی کے سنستھاپک امام خمینی نے پیش کر دیا تھا۔ امام خمینی کا ماننا تھا کہ ایران کو سبھی کھیتروں میں آتم نربھر بننے کے ساتھ ہی رکشا کھیتر اور سینیہ ادیوگ میں آتم نربھر بننا چاہیے۔
اسلامی کرانتی کی ایک انیہ اپلبدھی مہیلاؤں کا اتھان ہے۔ مہیلائیں آدھی آبادی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلامی کرانتی سے پہلے ساماجک اور راجنیتک کھیتر میں ان کی بھومیکا بہت کم تھی۔ کرانتی سے پہلے پشچمی سنسکرتی کے پربھاؤ میں سماج نے ایک وشیش روپ لے لیا تھا اور مہیلاؤں کو کافی حد تک سیمت کر دیا گیا تھا۔ اسلامی کرانتی کی وشیشتاؤں نے اسے دنیا کی دوسری کرانتیوں سے وشیشت بنا دیا ہے۔ ان میں سے ایک وشیشتا کرانتی کے آندولن میں مہیلاؤں کی سکریہ بھومیکا ہے۔
کرانتی سے پہلے ایرانی سماج میں مہیلاؤں کے بارے میں دو درشٹیکون ہوتے تھے۔ پہلے درشٹیکون کے مطابق مہیلا ایک سندر اور آکرشک چیز ہے جس کے ذریعہ اچھا وقت گزارا جا سکتا ہے۔ دوسرے درشٹیکون کا ماننا ہے کہ مہیلا ایک کمزور پرانی ہے جس میں طوفانوں کا مقابلہ کرنے اور مشکلوں سے پار پانے کی شکتی اور ساہس نہیں ہے۔ تتکالین سماج میں مہیلا ایک دل فریب دیوی کی طرح تھی جسے صرف لوگوں کا دل چرانا اچھی طرح سے آتا تھا، اس کا جیون ادیشین تھا۔
1978 में शुरू होने वाले विरोध प्रदर्शनों के साथ ही क्रांति की चिंगारी भड़क उठी और ईरानी महिलाओं ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ डाला, पश्चिमी संस्कृति को रौंद डाला और मैदान में कूद पड़ी। ईरान की इस्लामी क्रांति के इतिहास में महिलाओं ने हमेशा ही महत्वपूर्ण और महान भूमिका निभाई है। क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी ने इस संदर्भ में कहा था, इस आंदोलन में महिलाओं का हक पुरुषों से ज्यादा है। महिलाओं ने क्रांति के आंदोलन में दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, पहली राजनीतिक मंच पर प्रत्यक्ष भूमिका, दूसरी राजनीतिक मंच पर अप्रत्यक्ष भूमिका।
इस्लामी क्रांति को सफल बनाने में महिलाएं कोई भी बलिदान देने में पीछे नहीं रहीं। उन्होंने प्रदर्शनों में भाग लिया, शहादतें दीं और अत्याचार सहन किए। 9 सितंबर 1978 की त्रासदी के दिन कि जिसे क्रांति का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक शहीद हुईं। उस घटना के दौरान महिलाएं शहीदों के बीच बैठ गईं, जिन्हें शाही सैनिकों ने गोलियों से भून डाला। क्रांति में महिलाओं की अप्रत्यक्ष भागीदारी का मतलब है कि उनके पतियों, बच्चों, पिताओं और भाइयों पर जो प्रभाव पड़ा वो उन पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव से कम नहीं था।
पुरुष महिलाओं से साहस प्राप्त करते हैं, इसलिए अगर किसी सामाजिक आंदोलन में महिलाएं सहयोग नहीं करती हैं तो मर्दों में साहस काफी कम हो जाता है। इसके विपरीत अगर महिलाएं समर्थन करती हों और वे अपनी भूमिका अदा करें तो मर्दों का साहस कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि औरतें मर्दों को ऊर्जा प्रदान करती हैं। इतिहास में महिलाओं ने न केवल मर्दों को जन्म दिया है और उनकी परवरिश की है, बल्कि उन्हें साहस और ऊर्जा प्रदान की है। ईरान की इस्लामी क्रांति के आंदोलन के दौरान महिलाओं ने मर्दों के कंधों से कंधा मिलाकर शाही अत्याचारों का मुकाबला किया और इस आंदोलन में गति प्रदान की। इस्लामी क्रांति की सफलता में महिलाओं की भूमिका पश्चिमी समाजशास्त्रियों के मापदंडों से मेल नहीं खाती थी। उनका मानना था कि इस्लामी समाज में महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रहती हैं और मुस्लिम समाज में महिलाओं को नाखुश माना जाता था। इसीलिए उनका मानना था कि निश्चित रूप से इस क्रांति में महिलाएं विपक्षी मोर्चे में शामिल होंगी, क्योंकि उनका अनुमान था कि इस्लामी सिद्धांत के मुताबिक संचालित होने वाले समाज में महिलाओं का उनका अधिकार प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वो ऐसे समाज का विरोध करती हैं। लेकिन इसके विपरीत महिलाओं ने इस्लामी क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इसे सफल बनाने में अहम किरदार अदा किया।
ईरान की इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी ने यह भाप लिया था कि महिलाओं की भागीदारी के बिना उनका यह आंदोलन सफल नहीं हो सकेगा। इसीलिए उन्होंने महिलाओं से संबंधित इस्लामी नियमों को स्पष्ट रूप से बयान करने का प्रयास किया ताकि महिलाओं के दिल में किसी तरह का कोई शक बाकी न रहे। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते हैं और इस्लाम भी ये नहीं चाहता है कि महिलाएं हमारे हाथ का खिलौना बनकर रहें। इस्लाम महिलाओं के व्यक्तित्व की सुरक्षा करना चाहता है ताकि वे एक गंभीर और सार्थक शख्सियत बन सकें। हम किसी भी कीमत पर महिलाओं को मर्दों के हाथ का खिलौना नहीं बनने देंगे।
इमाम खुमैनी कहते थे, इस्लाम की शुरुआत में महिलाएं सेना में भी शामिल रहती थीं और वे युद्ध मोर्चे पर भी जाती थीं। इस्लाम विश्वविद्यालयों में होने वाले भ्रष्टाचार का विरोधी है। इस्लाम साम्राज्यवादी विश्वविद्यालय का विरोधी है, न कि विश्वविद्यालयों का। इस्लाम संस्कृति और सभ्यता का विरोधी नहीं है।
इस्लाम ने महिलाओं को मर्दों के बराबर का दर्जा प्रदान किया, हालांकि पैगंबर इस्लाम के जमाने में महिलाओं को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इस्लाम ने महिलाओं को शक्ति प्रदान की है। इस्लाम जिस चीज का विरोधी है वो यह है कि महिलाओं को मर्दों के हाथ की कठपुतली समझा जाए। और ईरान के पूर्व शाह का कहना था कि महिला को धोखेबाज होना चाहिए, हमें इन बातों से दूर रहना चाहिए और इस गलती को नहीं दोहराना चाहिए। हम चाहते हैं कि महिलाओं को भी मर्दों की तरह इंसान समझा जाना चाहिए, वो भी बाकी लोगों की तरह आजाद रहें।
इस्लामी क्रांति के संस्थापक ने इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले पेरिस में एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रदर्शनों और रैलियों में महिलाओं की भागीदारी वाजिब है, चाहे उनके पिता और पति इसके विरोधी हों, और उन्हें हक नहीं है कि महिलाओं को भाग लेने से रोकें। महिलाओं के लिए इमाम खुमैनी के इस फतवे ने समाज में मौजूद कई तरह की प्रथाओं को चुनौती दी। उनका कहना था कि दुनिया में महिलाओं की भूमिका को कई विशेषताएं प्राप्त हैं। समाज में अच्छाई और बुराई महिलाओं की अच्छाई और बुराई से फैलती है। महिलाएं अपनी गोद में ऐसे बच्चों की परवरिश करती है जिनके वजूद से समाज आगे बढ़ता है और उत्कृष्टता तक पहुंच सकता है, या उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में भी बढ़ सकता है। निस्संदेह इन पिछले काले 50 वर्षों में इस तानाशाही शासन ने ईरानी राष्ट्र और विशेष रूप से महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया है वो एक बड़ा अत्याचार था, जिसके लिए विश्व की साम्राज्यवादी शक्तियों ने योजना तैयार की थी। रजा खान और उसके अपराधी बेटे ने अपनी बीमार सोच के साथ ये अत्याचार किए, जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती है।
इमाम खुमैनी ने महिलाओं को अच्छाई और नेकियों का पुतला करार दिया था। वे महिलाओं को महान और सम्मानजनक हस्ती मानते थे। उनकी नज़र में एक खुशहाल समाज वो समाज है जिसमें महिलाएं प्रशिक्षित होती हैं। महिला का स्थान समाज के हाशिए पर नहीं है, बल्कि उसके केंद्र में है। इमाम खुमैनी का मानना था कि ईरान की क्रांति के आंदोलन में महिलाओं ने मुख्य भूमिका निभाई और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इमाम खुमैनी के विचारों ने महिलाओं को काफ़ी प्रभावित किया। इसी वजह से महिलाएं मैदान में उतर गईं, और वो भी इस्लामी हिजाब के साथ। उन्हीं के विचारों के आधार पर आज के ईरानी समाज की रूपरेखा तैयार हुई, और आज लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं की अहम भूमिका को महसूस किया जा सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने विचार हमें अवश्य लिख भेजिए। और इसी के साथ अब ये हमारी सभा भी आज की संपन्न होती है। आपसे अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज। Thank you.